नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि जनगणना 2027 दो चरणों में कराई जाएगी।
सेंसस दो फेजेस में होगा। फेज वन में फोकस रहेगा हाउसहोल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। दैट विल बी दी बेस फॉर फेज टू, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा भारत के कानूनों के हिसाब से।
ये देश की 16वीं और आजादी के बाद से 8वीं जनगणना होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रह किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला संपर्क नीति कोल सेतु में सुधार को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मंत्रिमंडल ने आज कोयला लिंकेज नीति कोल सेतु में सुधार को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। नई नीति के अनुसार औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए कोल सेतु नामक एक विंडो बनाई गई है, जिसके अंतर्गत गैर नियामक क्षेत्र एनआरएस लिंकेज नीति में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत घरेलू खरीदार लिंकेज नीलामी में भाग ले सकते हैं। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक मांग पहले हिस्से और विनियोग विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश किया। इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि से अतिरिक्त व्यय के लिए भुगतान और विनियोजन अधिकृत किया जाएगा। सदन में अनुपूरक मांगों पर चर्चा अभी चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने कार्य सलाहकार समिति में यह मुद्दा उठाया था, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना होगा और ये देखना होगा कि नियमों के अनुसार चर्चा कैसे आयोजित की जाए। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल सहित 8 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपना काम शुरू कर चुके हैं और अगले वर्ष फरवरी में मतदाता सूची जारी होने तक इन राज्यों में प्रत्येक सप्ताह के 2 दिन मौजूद रहेंगे। ये पर्यवेक्षक राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों के साथ ये सुनिश्चित करेंगे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो। ये पर्यवेक्षक एसआईआर प्रक्रिया पर निगरानी रखेंगे ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी भी अवैध मतदाता का नाम सूची में न रहने पाए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैकले के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के परस्पर लाभ के लिए बातचीत आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। बैंकॉक में भारतीय दूतावास गोवा नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा से संबंधित मामले में थाईलैंड के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। इस नाइट क्लब में पिछले सप्ताह आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि दूतावास के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड के अधिकारियों ने दोनों को फुकेत में हिरासत में लिया। एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट के पहले मुकाबले में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 234 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बनाए थे। भारत के वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 171 रन की शतकीय पारी खेली। भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से 14 दिसम्बर को होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना के कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में घने कोहरे की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।